Sabo sangue, oh, में वो महाप्रभु को अलग अलग दृष्टि से देख रहे थे। वृंदावन में आए थे, उन्होंने दीक्षा ली लोकनाथ दास गोस्वामी से और शिक्षा ली जीवा गोस्वामी से। तो पहले वो वृंदावन में रहते थे और जब वो वापस नवद्वीप लौटे तो सारे भक्तों ने पूछा वो स्वामी का स्वास्थ्य कैसे था। आज तो आप टेलीफोन करके सब सूचना प्राप्त कर सकते हैं, पर उन्हें भी सूचना नहीं थी। तो लोकनाथ स्वामी स्वरण ने दीक्षा ग्रहण किया। और जीवन गोस्वामी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और जब गोस्वामी ग्रंथों को बंगाल में भेजना था तो तीन भक्त ले गए थे, जिनमें एक ठाकुर रास्ते में चोरों ने इन ग्रंथों को चुरा लिया था। तो नरोत्तम ठाकुर ने हमें अनेक प्रसिद्ध भजन दिए हैं और ये जो भजन गाया था दिया में वो पेड़ बताना चोर ना पर चोर, इसमें वो कहते हैं जो व्यक्ति भगवत प्रेम का ज्ञान लाया है वो व्यक्ति गांव में छोड़कर चले गए, कहाँ है मिलने स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी, कहाँ है सनातन गोस्वामी, कहाँ है रघुनाथ दास, ये सब जो हैं कवियों के उदाहरण के लिए प्रकट हुए थे, कहाँ मिले रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट, कहाँ है कृष्णदास का विराज, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु। और मैं अपने सिर को पत्थर के साथ मारता हूँ इस दुख में इन भक्तों की संगत मुझे प्राप्त नहीं कर रही, और नरोत्तम ठाकुर रो रहा है क्योंकि इन भक्तों की संगत मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो नरोत्तम ठाकुर ने अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं और अनेक भजनों की रचना की है। और प्रभा जी कहते थे कि नरोत्तम ठाकुर की रचना में और भक्तिवृंद ठाकुर की रचना में और वैदिक शास्त्रों की रचना में कोई अंतर नहीं है। तो वैष्णव के अनेक भजन हैं जो भक्त गाते हैं, जो वैष्णव सॉन्ग बुक है उसमें लगभग आधे भजनों की रचना नरोत्तम ठाकुर ने की है। हम जो लोग श्री गुरु चरण परमा गाते हैं इसकी रचना भी नरोत्तम ठाकुर ने की है। और उनकी अनेक रचना में एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दयाकर, जो अक्सर भक्त गाते हैं। आज हम इस रचना की डिस्कशन की चर्चा करेंगे। तो नरोत्तम ठाकुर ने अपनी रचना द्वारा ये स्थापित किया है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर भोले तुमा बिना के दयालु जगत संसार है। वो कहते हैं इस रचना में चैतन्य महाप्रभु आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आप प्रकट हुए हो किस लिए, पतितों का उद्धार कर लीजिए। तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसार है, आपसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु को सबसे दयालु अवतार माना जाता है, क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अध्यात्म जीवन बहुत ही सरल बना दिया, केवल ये संदेश या भाई नाम के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो भगवान के अनेक अवतार हैं पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो सबसे दयालु हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग जो है बहुत ही सरल बना दिया है। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे किस रूप में, भक्त के रूप में, भक्त के रूप में प्रकट हुए थे हमें भक्ति की शिक्षा देने के लिए। पति पवन तब अवतारा भोजनों की तक प्रभु न भय गया है। आप प्रकट हुए हो किस लिए? चैतन्य महाप्रभु के प्रकट हुए पतितों का उद्धार करने के लिए। तो इस कलयुग में देखा जाए हम सब पतित हैं। आप कहोगे हम तो ब्राह्मण खानदान में हमें जन्म दिया है, पर हम सब क्या है? बड़े पतित हैं। कलो सुंदर सुनो, इस कलयुग में सब जो है सुंदर के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं किस लिए? पतितों के उद्धार के लिए। और इस कलयुग में हम सब पतित हैं, बचपन से ही जुड़ जाते हैं पाप के कार्य में। और देखा जाए ध्यान से आध्यात्मिक कार्य में रुचि भी बहुत कम लोगों की है, अगर रुचि है भी तो नाम के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट हुए हैं पतितों के उद्धार के लिए। और आप देख सकते हो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर सारे विश्व के पतित लोग जुड़ रहे हैं कृष्ण भक्ति के साथ। आप सबका सौभाग्य है, आपने भारत भूमि में जन्म लिया है, यहाँ की बचपन से ही अब राम और कृष्ण की महिमा सुनते आ रहे हो, बचपन से ही गीता भागवत के विषय में सुनते आ रहे हो। उन देशों में जहाँ की किसी ने कभी कृष्ण और राम का नाम भी नहीं सुना था, उन देशों में जहाँ की बचपन से ही लोग जुड़ जाते हैं पाप के कार्य में, उन देशों में भी आज आप क्या देखते हो? हजारों हजारों भक्त जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हुए थे परिणाम के उधार के लिए। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप कुछ जादू कर सकते हो? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, सुना जाता है, संत महात्मा है तो जादू भी करेंगे, तो चमत्कार दिखाएंगे। तो कई लोग चमत्कार दिखाने के माध्यम से महात्मा बन जाते हैं। तो किसी ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी कैन यू सम मैजिक, आप कुछ जादू कर सकते हो? प्रभुपाद जी ने कहा, नो जादू कोई जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो उस व्यक्ति ने बड़ी जिज्ञासा की, क्या जादू स्वामी जी ने किया है? मैंने हजारों बच्चों को ब्राह्मण बना दिया है। तो जो नेचर थे, नेचर किसे कहते हैं, जो कि बचपन जो कि गलत कामों में जुड़ा हुआ है, शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने हजारों वृक्षों को ब्राह्मण बना दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए किस लिए? पतितों के उद्धार के लिए। तो उन देशों में जहाँ की लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं था वैदिक शास्त्र के विषय में, आज वो ऊंचे कोटि के ब्राह्मण बन गए। कई बार भारतीय लोग जब हमारे विदेश के मंदिर में जाते हैं और उन्हें सूचना मिलती है कि विदेशी भक्तों को देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं, वाह तुम लोग चाय क्यों पी रहे? तो ये है चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा कि उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी है जिसके पालन से पतित व्यक्ति भी ऊंचे कोटि का ब्राह्मण बन सकता है अगर उस देश का प्रचार किया जाए प्रमाणिक प्रतिनिधियों के द्वारा। तो नरेंद्रदास ठाकुर कह रहे हैं, पहले जो उन्होंने महाप्रभु जी की दया की भीख मांगी और ये कहा कि आप प्रकट हुए हो पूरे संसार पर दया देने के लिए। और आगे क्या कहते हैं, पतितों के उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी सबसे दयालु अवतार है। वो समय प्रियतर प्रभु जहाँ बह गया आगे नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं कि सब पतितों में सबसे ज्यादा पतित कौन है, सबसे ज्यादा पतित हूं मैं। वो कहते हैं सब भक्तों में मैं सबसे गिरा हुआ हूं। तो इसे हम भक्तों को बड़ा महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो रहा है। ये होना चाहिए हमारा भाव। भौतिक समाज में हम सबका प्रयास रहता है कि हम ये दिखाएं हम सबसे ज्यादा सफल है, सबसे खूबसूरत है, सबसे धनी है, सबसे खूबसूरत है। पर आध्यात्मिक जीवन में घर के मन में भाव रहता क्या कि मैं क्या हूं, सबसे सबसे प्रतीत हूं। तो कहते हैं वो सब पतित प्रभु ना पे प्यार है। आप पतितों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हो पर मेरे से ज्यादा प्रभु पतित कोई है ही नहीं, तो मुझे आपकी कृपा सबसे पहले प्राप्त होनी चाहिए। जैसे किसी खानदान में सबसे छोटे बच्चे को ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो वहां प्रभु नरेंद्र नाथ ठाकुर कह रहे हैं हालांकि वो मंजारी के अवतार है। मंजारी में कहा जाता है जो कि गोपियों का सहयोग देती है, गोपियां राधा नाम जी का सहयोग देती है भगवान की सेवा में। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं सबसे पतित हूं। आप प्रकट हुए हो पतितों के उद्धार के लिए और मेरे से ज्यादा पतित आपको कोई मिलेगा ही नहीं। इस विषय में कृष्णदास काविराज जिन्होंने चैतन्य चरितमृत की रचना की उसमें कृष्णदास काविराज कहते हैं कि मैं इतना पतित हूं, इतना दोषी हूं कि अगर तुम मेरा नाम ही लोगे तो तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे, मेरा नाम ही मत लो। हमारे संप्रदाय में कई महान संत हैं जिन्होंने अपने जीवन के विषय में कोई सूचना नहीं छोड़ी। और कई संत हैं जिन्होंने कृष्णदास काविराज चैतन्य चरितमृत की रचना से पहले सब गोस्वामी के पास गए थे आशीर्वाद मांगने के लिए। और कईयों ने कहा आशीर्वाद देंगे रघुनाथ भट्ट ने कहा पर एक शर्त पर मेरा नाम बिल्कुल ग्रंथ में नहीं होना चाहिए। तो कृष्णदास काविराज कह रहे हैं कि मेरा नाम ही मत लो। ये हमारा सिद्धांत। हम लोग उस संप्रदाय से जुड़े हैं जिसमें ये उपदेश दिया जाता है कि अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो, अगर आप भगवान की कृपा चाहते हो, अगर आप सदा हरि के नाम को जीव के साथ जोड़कर रखना चाहते हो तो भगवान में क्या विनम्रता का भाव होना चाहिए। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम सबके सेवक हैं, सबके दास हैं, ये नहीं कि हम सबके मालिक हैं। और अगर इस भावना से चलोगे तो फिर आप भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु जी से कहा क्या आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो और आप हमारे साथ बैठकर विधान दस्तुता का अध्ययन क्यों नहीं करते, क्यों ये अखबारों में से नाच रहे हो गा रहे हो। उन्होंने कहा बड़ी विनम्रता से मेरे गुरु ने कहा सो देखा कि मैं तो मूर्ख हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम क्यों ये हरिनाम के उच्चारण की योग्य हो। तो विश्वनाथ का विकास भी कह रहे हैं मैं नाम तो नरोत्तम साधु कह रहे हैं कि मैं सब पतितों में सबसे ज्यादा पतित हूं। और हम लोग की क्या स्थिति है, कभी गलती से कोई हमारा नाम नहीं ले तो हम क्या कहते हैं, मेरा नाम लेना भूल गए, मैंने इतनी मेहनत की थी और कुछ आदर नहीं मिला। तो अगर अपना नाम लेना अगर कोई भूल जाए तो बुरा नहीं मानो। विश्वनाथ कविराज के भाव को याद रखो, क्या वो कहते हैं, मेरा नाम ही मत लो, मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिट जाएंगे। दया करो सीता पति अद्वित गोसाई, दया कृपा बालक में हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेम नंद सुखी, कृपा करो कर्म करे हमें बोलो सुखी। तो आगे इस प्रार्थना में वो कहते हैं हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेम नंद सुखी नित्यानंद,
भगवान नित्यानंद, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। भगवान नित्यानंद जैसे जानते हो
बालराम, बालराम जी के हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या हो गया हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। तो भगवान नित्यानंद जो है किसके अवतार है, नित्यानंद, सदा वो आनंद में ही रहते हैं। और अगर हमें चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा चाहिए तो पहले हमें किसके पास जाना पड़ेगा, भगवान नित्यानंद के पास। तो हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, आप जो हो आनंद में हो, अत्यंत सुखी हो। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ा हो वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। और अगर कोई भौतिक कार्य में जुड़ा है तो चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त हो वो शांत रहेगा। भगवतम के भगवतम में आप भगवान वामदेव की कथा पढ़ते हो तो वामदेव प्रकट हुए थे ब्राह्मण बालक के मन में। बाली महाराज ने उनसे पूछा मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, कुछ मांगो मेरे से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ लेना तो ले लो, जहाँ मैं तीन कदम रख सकूँ। बाली महाराज ने कहा तुम निर्दोष बालक नजर आते हो, धनी व्यक्ति के पास जाकर चावल के दाने थोड़ी भी मांगते, कुछ ज्यादा मांगो मेरे से। तो मामा ने कहा कि जिस व्यक्ति के मन रहने पर वश नहीं हो तो उसे आप सारे विश्व का धन दे दोगे तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा, और जिसने मन और इंद्रियों पर वश रखा है वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। तो भगवान नित्यानंद हमेशा सुखी हैं, आनंद में हैं। और नित्यानंद जी करके भाव क्या रहता है, परिंदों का उद्धार किया जाए जैसे उन्होंने
जगाए मन। बिजली चले गई, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। तो जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में जुड़े वो सदा संतुष्ट रहेगा, आनंद में रहेगा, कठिन स्थिति में भी संतुष्ट रहेगा, आनंद में रहेगा। तो भगवान नित्यानंद से प्रार्थना करते हैं आप जो हो अत्यंत सुखी हो, क्योंकि आपके हृदय में केवल भगवत प्रेम है, भक्ति की भावना है। कृपा करो कानों करे हमें बोलो दुखी, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, मैं जो हूं अत्यंत दुखी हूं। तो भौतिक संसार में हम सब दुखी हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए चाहे नरेंद्र साहब कह रहे हैं तो वो सच में दुखी है। ये है उनकी विनम्रता, और वैष्णव भक्त में हमेशा यही भाव रहता है कि हम अत्यंत पतित हैं, दुखी हैं। तो विनोदनदास साहब कह रहे हैं मैं हूं क्या बिल्कुल दुखी, पर अगर आपकी कृपा प्राप्त होगी तो मुझे भी आनंद प्राप्त होगा। गुरु की कृपा से आप हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, अगर इस आध्यात्मिक ज्ञान का हम लाभ उठाएं तो फिर हम असली आनंद अनुभव कर सकेंगे। दया करो सीता पति अद्वैत गोसाई, तब कृपा पाले पाई चेतना। आगे वो कहते हैं सीता जी के पति अद्वैत, तो एक सीता थी भगवान राम की पत्नी, एक सीता है अद्वैत आचार्य की पत्नी। अद्वैत आचार्य को महाविष्णु का अवतार माना जाता है और अद्वैत आचार्य प्रकट हुए थे महाप्रभु जी से पहले, लगभग महाप्रभु के पिता के जगन्नाथ मिश्रा की उम्र के बराबर के थे। और अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहते थे, हर साल शांतिपुर में बड़ा उत्सव होता है इस्लाम के द्वारा, तो शांतिपुर में रहते थे। और अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर दिन रात हरिनाम कर रहे थे और भागवत का अध्ययन, और अद्वैत आचार्य के पास चार नाम शिला थी जिनकी वो पूजा करते थे। और अद्वैत आचार्य ने ये प्रार्थना की थी क्या, हे भगवान आप प्रकट हो पति का उद्धार करने के लिए। जब उन्होंने देखा समाज की स्थिति तो उन्होंने कहा कि ये उनका उद्धार केवल जब होगा अगर चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो, भगवान स्वयं प्रकट हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य को बहुत ही आदर देते थे, और क्योंकि उनकी उम्र बाकी पंचतत्वों से ज़्यादा थी, इसलिए आप देखते हो अद्वैत आचार्य की तस्वीर को दाढ़ी के साथ। तो वो प्रार्थना करते हैं आगे क्या, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, अद्वैत आचार्य जी आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आप दया दोगे तो फिर मुझे भगवान नित्यानंद भी दया देंगे और फिर कौन चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो अद्वैत आचार्य दयालु हैं, उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आहास रूप सनातन रूप रघुनाथ भट युग श्री जी वह प्रभु लोकनाथ। तो जैसे मैंने कहा था विनोदनदास ठाकुर ने दीक्षा ग्रहण की थी लोकनाथ दास को स्वामी से और शिक्षा ग्रहण की थी जीवन गोस्वामी से। तो यहाँ कह रहे हैं आहास रूप सनातन रूप रघुनाथ, यहाँ अभार प्रकट कर रहे हैं छह गोस्वामी का। ये जो छह गोस्वामी थे बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, वो भी मंजारी हैं या मंजारियों के अवतार रूप और सनातन। रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं। विनोदनदास ठाकुर एक और प्रार्थना में कहते हैं रूप रघुनाथ पदे है कभी हमारे हेरा से युगल पीड़ित थी, कब वो शुभ दिन आएगा जब हमें रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन का मौका प्राप्त होगा। तो रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उस समय के सबसे धनी प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, पर उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में। रूप गोस्वामी ने थोड़ी देर के लिए नौकरी करने के पश्चात त्याग पत्र दिया। असल में उन्होंने पहले भी वो एक पत्र उनकी इच्छा थी कि सरकारी नौकरी छोड़े, तो महाप्रभु ने उन्हें कहा थोड़ी देर और करते रहो। फिर जब उन्होंने छोड़ी सरकारी नौकरी उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी, और उन्होंने आधी संपत्ति बांटी ब्राह्मणों को, 25% बांटा रिश्तेदारों को, और 25% रखा जो कि भविष्य में भगवान की सेवा में उपयोग किया। तो रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में भेजा। एक आदेश था कि वेदों पर आधारित ग्रंथों की रचना करने के लिए, और रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें दो बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे प्रभुपाद जी ने प्रकाशित किया है बाकी रसमृत सिंधु और श्री उपदेश के नाम पर। और कार्तिक के महीने में जब श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में थे एक महीने के लिए 1972 में, तो प्रभुपाद जी रोज प्रवचन दे रहे थे बाकी रसमृत सिंधु के ऊपर, नेक्टर डिवोशन के ऊपर। तो रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, और उन्होंने कई मंदिरों की भी स्थापना करवाई है। तो जो हम गौड़िया वैष्णव हैं, हम भक्तों का एक और नाम क्या है, रूप दुर्गा, कि हम रूप दुर्गा रूप गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर चलते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, तो वो आदर दे रहे हैं गोस्वामियों को। फिर सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भाई थे, और सनातन गोस्वामी उनकी भी इच्छा थी कि मैं ये सरकारी नौकरी त्यागूं और वृंदावन में जाऊं ग्रंथों की रचना करने के लिए। सनातन गोस्वामी को राजा छोड़ना नहीं था, सनातन गोस्वामी ने जब इनकार कर दिया नौकरी करने के लिए, तो नवाब ने उसे जेल में डाल दिया। तो जेल में मुसलमान जेलर था, तो जब वो जेल में थे तो उनको पत्र आ गया था उनके भाई का कि मैंने थोड़ा धन इस व्यक्ति के साथ बचा है। तो सनातन गोस्वामी ने कोशिश किया, उस जेलर को कहा ये धन निलंबित छोड़ दो, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। नहीं तुम्हें कैसे छोड़ो, तुम तो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो, राजा मैंने नहीं छोड़ा। सनातन का थोड़ा और धन दे दो। तो सनातन निकले जेल से, और जेल से निकल कर वो आ रहे थे बनारस चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। उस समय चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर जो एक नीची जाति के भक्त थे उनके घर में निवास कर रहे थे। रास्ते में चैतन्य सनातन गोस्वामी रुके, एक होटल के समान सुविधा थी, तो वहाँ वो होटल का जो मालिक था बड़ा ध्यान दे रहा था सनातन गोस्वामी को, खुशामद कर रहा था। तो सनातन के पास राजनीतिक कार्यों का अभ्यास था। सनातन ने अपने नौकर से पूछा, उनके नौकर का नाम जो साथ जा रहा था ईशान, उन्होंने पूछा तुम कुछ ध्यान तो नहीं उठा रहे अपना तुम्हारे साथ? तो ईशान ने कहा मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं, थे 8। उन्होंने झूठ बोल दिया। तो सनातन ने कहा तुम इस मौत को अपने साथ क्यों रख रहे हो? तो 7 सिक्के लिए और जो होटल का मालिक था उसे देने का प्रयास किया। तो होटल के मालिक के पास एक जोशी था, जब कोई व्यक्ति आता था तो वो देख लेता था ये कितना धनी है, और ये धनी हो तो फिर उसको लूट लेते। तो होटल के मालिक को जोशी ने कहा था ये बड़ा धनी व्यक्ति है, इसके पास 8 सोने के सिक्के हैं, इसके लिए बड़े ध्यान से उनकी देखभाल किया कर रहा था। फिर सनातन ने जबरदस्ती उसे दिया और चैतन्य महाप्रभु को मिले। तो सनातन गोस्वामी ने भी हमें कई प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं और परशुराम भक्त ने वो मदन मदन गोपाल का नाटक भी देखा था और ये मदन मोहन मंदिर की स्थापना हुई थी सनातन गोस्वामी जी की प्रेरणा से। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी जमींदार के पुत्र थे और एक ही पुत्र थे, जैसे मैंने कहा हमें नरोत्तम दास ठाकुर भी क्या राजकुमार थे, राजा के बेटे, कोई भिखारी नहीं थे। कई बार लोग सोचते हैं हाँ जो वैष्णव जो हैं जो निकम्मे होते हैं समाज में नौकरी मिली स्थिति में जो भक्त प्रदा थे, नहीं पर अगर आप अपना इतिहास पढ़ो तो आप देखोगे बड़े प्रसिद्ध कामना के भक्त के व्यक्ति भक्त बने हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के बेटे थे, प्रे के बेटे रघुनाथ दास, और शुरू से उनकी रुचि थी अध्यात्मिक कार्यों में और हालांकि हर रूप से उनके पिता ने प्रयास किया कि बेटा जब भौतिक कार्य में जुड़े तो उनकी रुचि शुरू से ही थी किसमें शुद्ध भक्ति के शिक्षा में। फिर जीवा गोस्वामी इनके भतीजे छोटी आयु में ही बहुत बड़े विद्वान बन गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। फिर जो छह गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु जी के सबसे प्रिय बड़े प्रिय भक्त थे, उन्होंने हमें गहरा ज्ञान दिया है इन ग्रंथों के माध्यम से। तो नरोत्तम दास ठाकुर इन गोस्वामियों का आभार प्रकट करते हैं और साथ में अपने गुरु महाराज जिनका नाम क्या था, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो फिर आगे कहते हैं श्रीनिवास आचार्य उनकी भीख मांगते हैं, उनसे भीख मांगते हैं क्या, हमें दया दीजिए दया दीजिए दया दीजिए, और रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। आगे अंत में कहते हैं मुझे कृपा करके किसी प्रकार से रामचंद्र काविराज की क्या प्राप्त हो, संगत प्राप्त हो। रामचंद्र काविराज गृहस्थ आश्रम में थे, भौतिक दृष्टि से धनी नहीं थे पर जुड़े हुए थे पूरे रूप से किसमें, भगवान की सेवा में। तो नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र और रामचंद्र काविराज बड़े प्रिय मित्र थे। आगे वो कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास भीख मांग रहा है क्या कि मुझे रामचंद्र काविराज की संगत प्राप्त हो। तो उसी प्रकार हम सब की इच्छा क्या होनी चाहिए कि हम किस में रहे, साधु संगत में रहे। हमारा यही भाव होना चाहिए कि हमें साधु संगत प्राप्त हो और अगर मौका मिले साधु संगत कर प्राप्त करने का इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। सत्संग त्याग है वैष्णव आचार शास्त्र का आज्ञा है और भक्तों की संग से जुदा रहो। तो आज के वातावरण में क्योंकि हम सब नौकरी करते हैं धंधा करते हैं और भक्तों की संग से दूर हमेशा तो नहीं रह सकते, तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि भक्तों की संगत उतना ही ग्रहण करें जितना कि आवश्यक हो, जितना हो सके भक्तों के संग में रहें। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है साधु संग साधु संग सर्वसाधन का। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें अनेक प्रसिद्ध भजन दिए। एक और प्रसिद्ध भजन में वो कहते हैं हरि हरि जन्म ने गुनाह जो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भाजिया जानिया शून्या पीशा भाई हो। तो ये भी बड़ा प्रसिद्ध भजन है। तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मनुष्य जन्म पाया मनुष्य जन्म तो मुझे प्राप्त हो गया है। हम भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन हमें बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। आप सब स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, आपको किसी अध्यापक ने कभी समझाया मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है? कोई नहीं, कोई स्पेशली चर्चा ही नहीं करता। तो नरेंद्र दास ठाकुर कह रहे हैं मैंने मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया, पर राधा कृष्ण नहीं गुना भाजिया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया मैंने, राधा कृष्ण की सेवा नहीं की। जाने शून्य पीछे खाई दू, तो मैं जान बुझ कर क्या पी रहा हूं? पीछा, पीछा का अर्थ है जहर। तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैं जान बुझकर क्या कर रहा हूं? जहर पी रहा हूं। तो आज समाज की यही स्थिति है, लोग जहर पी रहे हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि एक समय व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था अपने कोठे से, नीचे गिरने वाला था, किसी ने कहा सावधान रहो खतरा है, और ये कहने लगा दूसरा व्यक्ति मुझे पतंग उड़ाने दो। तो आज ये समाज की स्थिति, लोग झेल पी रहे हैं और भर जाते हैं और कहते हैं कि पकड़ के झेल मत पीजिए, झेल की जगह अमृत पीजिए। तो कहीं अमृत को ले लेते हैं, कहीं नहीं लेते। अगर कोई भी अमृत को नहीं लेता तो आप सब यहाँ होते होते नहीं। तो कई बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो कहते हैं, स्वीकार करते हैं, हाँ सचमुच ये भौतिक जीवन जहर है और हमें अमृत प्राप्त करना चाहिए। इसका अर्थ है भगवान की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होनी चाहिए। तो आज जैसे हमने कहा बड़ा शुभ दिन है, आज वो शुभ दिन है जबकि ये महान संत रुद्रदास ठाकुर जो कि मंजारी के अवतार है, चंपकलता मंजारी के अवतार है, आज प्रकट हुए थे। तो हम भक्तों को रुद्रदास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, कि हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम उत्पन्न हो, कि हमारे हृदय में भी सेवा की भावना प्रकट हो, हमारे प्रेम हृदय में भी हरि नाम प्रति रुचि बढ़े, हमारे हृदय में वो निम्रता का भाव हो जो कि उनमें था, कि हम भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। और आप चाहो तो वैष्णव सॉन्ग बुक लेकर निरंतर साकृति कई रचनाएं हैं उनको भी पढ़ सकते हो, उन पर ध्यान दे सकते हो। तो जैसे आपको कहा था कल शाम को, कल शाम के प्रवचन में आप सब भक्तों के ऊपर एक और जिम्मेदारी है। क्या है वो जिम्मेदारी? हाँ, लोगों को अमृत देना। रुद्रदास ठाकुर ने कहा ना कि राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो मैं क्या पी रहा हूँ? जहर। तो आज लोग जहर पी रहे हैं तो हमें उनको क्या देना है? अमृत। और अमृत कैसे दोगे? ग्रंथों के वितरण की सेवा के द्वारा। ये जो ग्रंथ हैं प्रभुपाद जी के, ये हैं असली अमृत। लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। आप सब यही निवेदन है, आप सब जुड़िए उत्साह के साथ इस मैराथन में। अभी थोड़े दिनों में मैराथन शुरू होने जा रहा है 15 तारीख से, तो आप सब जुड़ोगे इसमें? कौन कौन जुड़ोगे? ये साल बुक मैराथन में, ये साल आपके बुक मैराथन का कोटा है 7-8 किताब, तो आप सब जुड़ोगे तो ये हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से आप भक्तों कभी बरसाना जा रहे हो तो वहाँ श्री राम प्रभु आपको देश देंगे। तो एक समय भगवान को सिर दर्द हो रही थी, भगवान ने उधर से कहा जाओ, ये सिर दर्द कैसे दूर होगी? अगर मेरे भक्त के चरणों की धूल मिल गई। सबने इनकार कर दिया, वो लोग सबके पास गए, तो लोग वापस लौटे भगवान के पास और भगवान को ये सूचना दी कि कोई भी तैयार नहीं है अपने चरणों की धूल आपको आपकी माथा में लगाने के लिए। तो भगवान ने पूछा, तुम राधा रानी और गोपियों के पास गए क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं सब जगह गया, उनके पास जाना भूल गया। तो जब राधा रानी गोपियों के पास आए और ये कहा कि भगवान को सिर से और ये चरणों के धूल से बड़ी खुशी से उन्होंने दिया, तो आप अभी जा रहे हो प्रसन्न और किधर जा रहे हो? हाँ तो वहां राधा रानी जी से हमारी यही प्रार्थना है क्या, क्योंकि कृपा प्राप्त होती है हम भक्ति में आगे बढ़ सके। एक समय एक गरीब ब्राह्मण भगवान के पास आया। गरीब ब्राह्मण चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह हो जाए, उसके पास धन नहीं था। उसकी पत्नी उसको बार बार कहती थी, जाओ धन मांग कर लाओ, भीख मांगो, मैंने अपनी बेटी की शादी करा ली है। तो ये गरीब ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास आया, कहा कि मेरी बेटी है, उसका विवाह कराना है, धन चाहिए। तो राधा रानी जी का जितना वजन था उतने वजन का सोना और चांदी भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया। जब युवा और सनातन गोस्वामी ब्रज में रहकर मधुबनी कर रहे थे, तो रूपा गोस्वामी की इच्छा थी कि सनातन गोस्वामी को अच्छी खीर खिलाई जाए, पर उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। एक समय तो राजा जैसे रह रहे थे, जब वृंदावन में आए मन कर करके रह रहे थे रोज अलग अलग पेड़ों के नीचे। अब वृंदावन में पेड़ भी खत्म हो गए, सब जगह बिल्डिंग बन गई है। तो युवक गोस्वामी की इच्छा थी कि अपने भाई को खीर खिलाया जाए, पर सुविधा नहीं थी उनके पास। तो राधा रानी जी ने छोटी लड़की का रूप ग्रहण करके युवक गोस्वामी के स्थान में पहुंचे और राधा रानी ने कहा, दो सन महात्मा ये दूध चीनी मक्खन सब लाकर दे दिया। और युवक गोस्वामी से कहा, आप तो रोज मधुकरी करने जाते हो, आज आप नहीं गए थे तो मैंने सोचा मैं ये लाकर आपको दे दूंगे, और अगर आप चाहो तो मैं खीर भी तैयार कर देती हूँ आपके लिए। उन्होंने खीर भी तैयार कर दी। जब उनके भाई सनातन गोस्वामी आए तो उन्होंने कहा, रोज हमें निर्मल पर सूखी रोटी मिलती है, आज इतनी अच्छी खीर कहाँ से तैयार की? फिर जब उन्होंने खीर को चखा तो एकदम चखने से ही भगवत प्रेम इतना प्राप्त हो गया, उन्होंने कहा खीर किसने बनाई थी? तो फिर निर्मल गोस्वामी ने पूरी कथा सुनाई। तो सनातन ने कहा, वो छोटी लड़की जो आई पता कौन थी? राधा रानी थी। और फिर उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी राधा रानी जी से हमें सेवा नहीं लेनी चाहिए, आप सब राधा रानी की भीख मांगिए तो अगर सामना जाओगे, और राधा रानी जी की कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है।